यशोदानन्दना व्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 20। अपहत सकलैश नामलात्मनि अवीरतम एधित भावनोपह्यूतः निज जन वास गत्वं आत्मनोयन् आत्मनोयन् न सरति चिद्रवत् अक्षर सतां हि अपहत सकलैश नामलात्मनि अविरतम् एधित भावनोपहुत निज जन वास गत्वं आत्मनोयन् न सरति छिद्रवद् अक्षर सतां हि अपहत सकलैश नामलात्मनि अविरतम् एधित भावनोपहूतः निज जन वास गत्वं आत्मनोयन् न सरति चिद्रवत् अक्षर सतां हि
अपहत सकलैश नामलात्मनि
शब्दार्थ अपहत परास्त हुई सकल सभी एषण इच्छाए अमल निष्कलंक आत्मनि मन को अविरतम निरंतर एधित बढ़ते हुए भावना भव से उपहुत बुलाया जाकर निज जन अपने भक्तों के वश नियंत्रण में गत्वम जाते हुए आत्मनः अपने अयन जानते हुए न कभी नहीं सरती दूर चला जाता है छिद्रवत आकाश की तरह अक्षरः भगवान सताम भक्तों को ही निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाय। समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। तात्पर्य पिछले श्लोक से प्रकट है कि भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्यों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव भगवान के विचार में मग्न रहता है। जैसा कहा गया श्रुणताम स्वकथा कृष्ण। निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि योगी का अपने अंतकरण में सदैव भगवान के दर्शन होते रहते हैं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। जो ही भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते। जब तक वह इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रिय सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती है। मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वह भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंदन तनुज किंकराम पतिताम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भवसागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों की धूली में लगा लीजिए। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा कर ये बार नरोत्तम दास कह नठेलिया रंग पाए तमो विना तोमा विना के आछे अमार। हे भगवान, अब आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित है। अब आप दोनों मेरे ऊपर कृपालु हो, मुझे दूर न भगाए, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान अजय है, किंतु अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर उसी प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने को भक्तों के वश में सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेता है और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक भगवान की पूजा करता है, अतः कभी कभी भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथां नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखां नितांश। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण मिनिमम स्पीड की डाउन मिनिमम। हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो सभी भक्तों से यहाँ पे जो उपस्थित है और अनुपस्थित है, असेंबल्ड एंड अनअसेंबल्ड डिवोटीज, सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ताकि मैं कुछ यहाँ पे भागवतम के विषय पे कुछ यहाँ पे बोल सकूँ। और स्पेशली विशेष करके हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु से भी याचना करता हूँ। तो हिंदी में थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा, इतना अच्छा नहीं है हिंदी. तो ये काफी चुनौती का यहाँ पे भागवतम क्लास में, जहाँ पे बहुत ही कम भक्त है और क्लास देना काफी एक चैलेंज है. तो एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि कैसे वो जब आत्मा सीरियल का शूटिंग करते थे, तो उनका जो शूटिंग था वो जुहू मंदिर में होता था, और वो कब स्टार्ट होता था, रात को 10 बजे. तो वो कैमरामैन आता था और फिर गौरांग प्रभु उधर जुहू मंदिर में जाते थे रात को, और फिर सब मंदिर बंद हो गया, सब चले गए, तो टेंपल हॉल में ये दोनों गौरांग प्रभु और कैमरामैन. तो वो रात को 10 बजे फिर वो कैमरा वगैरह सेट करके वो गौरांग प्रभु को बोलता था कि आप शुरू कीजिए, और वो जाके कैमरा के पीछे सो जाता था. तो गौरांग प्रभु बोलते थे मुझे, यानी इतना प्रोत्साहन देने के लिए सारे भक्तों को जग भर में जागो जीव जागो और क्या क्या बोलना पड़ता था, लेकिन वो कैमरे के पीछे जो कैमरामैन है वही सो रहा है, तो कितना मुश्किल था. वो भी रात को 10 बजे, सामने कोई नहीं है और शूटिंग चल रहा है. तो वैसे ही थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है. तो फिर भी थोड़ा प्रयास करेंगे. तो यहाँ पे बताया है श्लोक में कि भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, जैसे आकाश हमेशा हमारे ऊपर रहता है, कभी वो अदृश्य नहीं होता. और फिर बाद में श्लोक प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी कहते हैं कि कैसे एक जो भक्त है भगवान पे पूरी तरह से निर्भर होता है, और भगवान अपने भक्तों पे निर्भर होते हैं. तो ये इंटरडिपेंडेंस, भगवान अपने भक्तों पे पूरी तरह से निर्भर है और भक्त भी भगवान पे निर्भर है. तो एक ये सुंदर आदान प्रदान भगवान और अपने भक्तों के बीच में यहाँ पे बताया है. तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान और भक्तों के बीच में एक मधुर आदान प्रदान होता है हमेशा. भक्त कभी भगवान को नहीं छोड़ते और भगवान अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं. तो जैसे श्लोक आता है, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यत्ते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि. तो साधु मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में हमेशा रहता हूं, और मुझे उनके बिना कुछ पता नहीं है और उन्हें भी मेरे अलावा कुछ भी पता नहीं. तो एक ये आदान प्रदान भगवान और अपने भक्तों के बीच में होता है. तो हाल ही में मैं राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें वो गोवर्धन लीला के बारे में बता रहे थे कि कैसे हर साल जैसे इंद्र पूजा होती थी, लेकिन इस साल भगवान कृष्ण ने नंद महाराज और व्रजवासियों से कहा कि इस साल हमने इंद्र की पूजा नहीं की तो क्या होगा, हम इंद्र की पूजा इस साल नहीं करेंगे, और वही सामग्री से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे. और भगवान बड़ा उसके पीछे तत्वज्ञान देते हैं कि कैसे गोवर्धन ही हमारे असली भगवान है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए. तो सभी मान जाते हैं कि हम इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा करेंगे सिर्फ कृष्ण के कहने पर. तो जब ये प्रसंग महाराज बता रहे थे तो महाराज इतने भाव विभोर हो गए और महाराज रोने लगे, महाराज के आंखों से आंसू आने लगे. मैंने सोचा क्या है इसमें इतना, हम तो कई बार ये गोवर्धन लीला बता देते हैं. तो महाराज कह रहे थे कि कितने व्रजवासी भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान जो बोल रहे हैं वो करने के लिए तैयार है, और महाराज रोते रोते से ये सब बोल रहे आगे 10-15 मिनट कि कैसे उनको पता नहीं आगे क्या होगा, इंद्र कितना कुपित होंगे और उनके ऊपर मुसलधार वर्षा करेंगे, उनको पता नहीं, लेकिन उनको इतना पता है कि भगवान की ये इच्छा है, बस हमें वही करना है। तो इतने निर्भर भगवान के ऊपर, और भगवान जो कहेंगे वही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतना महाराज उसके उसका वर्णन कर रहे थे और महाराज के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो कितना भगवान और भक्तों के बीच में एक सुंदर आदान प्रदान है। तो हमने तो कई बार गोवर्धन लीला बोली है, लेकिन ऐसा कभी आंख में आंसू नहीं आए कि ब्रजवासी इतना निर्भर है भगवान के ऊपर, उसके वजह से भाव विभर हो जाना। तो एक छोटा सा एक इंसिडेंस है। और एक महाराज कुब्जा के बारे में बता रहे थे कि कैसे जब भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा गए थे, जब कंस ने उन्हें बुलावा भेजा था, तो तभी जब कुब्जा आती है चंदन लेके, वो कंस के पास जा रही है, लेकिन तभी कृष्ण बलराम उसे कहते हैं कि ये चंदन हमें लगाइए। तो कुब्जा वो चंदन जो कंस के लिए है, वो चंदन कृष्ण और बलराम को लगाती है। तो महाराज इस प्रसंग को बताते हुए तभी भाव विभोर होते हैं और बोलते हैं कि आप सोचो, अगर आप कुब्जा के जगह पे होते तो कितना बड़ा वो संकट है कि भरे सब रास्ते के बीच में, सब लोगों के सामने कंस के गुप्तचर भी होंगे वहां पे, और कुब्जा ये चंदन जो कंस के लिए है, वो ये चंदन कृष्ण और बलराम को लगा रही है, और सबको पता है कि कृष्ण बलराम ये कंस के दुश्मन है। तो कितना बड़ा रिस्क, खतरा कुब्जा ले रही है। तो पहले जो धोबी था तो उसका तो ऑपरेशन कर दिया भगवान ने, लेकिन कुब्जा ये चंदन भगवान को लगा रही है। और महाराज कह रहे थे कि अगर हम उस स्थिति में होते तो हम कर पाते वो। तो कुब्जा का कितना साहस है कि सबके सामने कम्स के कैपिटल सिटी में उधर भगवान को वो चंदन लगा रही। तो भगवान भी इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि आप इतना खतरा ले रहे हैं मेरे लिए, आप अपनी जान मेरे लिए दे रहे हैं, तो मैं भी अपनी जान आपके लिए दूंगा। तो ऐसे भगवान का भाव है वहां पे। तो महाराज बोलते हैं कि कितना भगवान ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहते हैं कि भक्त ने थोड़ी भी सेवा की तो भगवान कितने कृतज्ञ होते हैं। तो कुब्जा का ये भाव देख के भगवान बहुत बहुत कृतज्ञ होते हैं कुब्जा के प्रति। तो महाराज ये बताते हुए भी भाव विभोर हो जाते हैं। तो कितना ये छोटा छोटा डीलिंग्स है, ये भगवान के जो बर्ताव, भगवान का जो आदान प्रदान है। हालांकि एक ऐसे भागवतम में एक किस्सा आ जाता है, लेकिन अगर हम सोचेंगे भगवान का एक एक जो डीलिंग्स है, एक एक जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, तो हमें रोना आना चाहिए। तो हम तो ऐसे ही कथा बता देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसमें अगर जाके हम देखेंगे तो भगवान और भक्तों के बीच में जो एक आदान प्रदान होता है बहुत ही मधुर है। जैसे प्रभुपाद भी आगे कहते हैं कि टेंडर डीलिंग्स, वो मैं पढ़ूंगा परपट। तो गौरांग प्रभु ये बता रहे थे कि कैसे व्रजवासी, व्रजवासी का अर्थ बता रहे थे। तो क्या है व्रजवासी का मतलब? तो जैसे ये व्रज ये शब्द आता है भगवद गीता में, कहां पे आता है? माम एकम शरणम व्रज। तो वहां पे ट्रांसलेशन क्या दिया, व्रज मींस टू गो। और एक जगह पे आता है भागवतम में, पिबंती ये भागवत आत्मन सताम कथाम मृत श्रवण पुटेशु संभृताम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। व्रजन्ति वहां पे भी आता। तो व्रज का अर्थ होता है व्रजन्ति, जो भक्त हमेशा सुनने में आतुर होता है सुनने के लिए, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, वो भगवान के पास जरूर जाता है व्रजन्ति। तो व्रज, व्रज का अर्थ टू गो और मूवमेंट, गौरांग प्रभु बता रहे थे मूवमेंट यानी चलायमान व्रज। तो ये व्रजवासी यानी ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा हमेशा चलायमान होती है। किसके हिसाब से? भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भगवान की इच्छा इतनी चेंज होती रहती है हमेशा, तो भगवान के इच्छा के अनुसार जिनकी इच्छा हमेशा चलायमान होती है, तो वो है व्रजवासी। तो ऐसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि व्रजवासी यानी उनकी इच्छा हमेशा भगवान के इच्छा के अनुसार रहने के लिए हमेशा डायनेमिक होती है, हमेशा चलायमान होती है, तो इसे कहते हैं व्रजवासी। तो जैसे ये श्लोक में आता है जो ध्रुव महाराज के सेक्शन में, तमे तम एव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्व अवस्थापि भजस्व पुरुषम। तो इसके परपट में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर लिखते हैं। ये श्लोक सुनीति ध्रुव को कहती है कि आप जंगल में जाके भगवान की पूजा करो, भगवान आपको सब देंगे। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में है यहाँ पे। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नोन एज भृत्य वत्सल विच इंडिकेट्स दैट ही इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज। शी सेड, एंड सुनीति सेड, यू केम टू मी क्राइंग हैविंग बीन इंसल्टेड बाय योर स्टेप मदर, बट आई एम अनेबल टू डू एनी गुड फॉर यू, बट कृष्णा इज सो काइंड टू हिज डिवोटीज दैट इफ यू गो टू हिम देन द कंबाइंड काइंडनेस ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स लाइक मी विल बी सरपास्ड बाय हिज अफेक्शनेट एंड टेंडर डीलिंग्स। When everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee. तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे भगवान जो है उनका जो अनुग्रह है, उनका जो प्रेम है, कई लाखों लाखों माताओं से भी ज्यादा है। तो ऐसे सुनीति कह रही है ध्रुव महाराज को, तो आप उनके पास जाओ। और इधर और क्या कह रही है कि उनके जो अफेक्शनेट एंड टेंडर डीलिंग्स, भगवान के जो मधुर आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, वो उससे क्या करते हैं भगवान, उससे जो भक्तों की जो मिजरी यानी दुख है वो दूर करते हैं। जब कोई, व्हेन एवरीवन एल्स फेल्स टू मिटिगेट्स वंस मिजरी, कृष्णा इज एबल टू हेल्प हिज डिवोटी। जब कोई भी दुख दूर नहीं कर पाता, तब कौन दूर दुख दूर करता है, सिर्फ भगवान कृष्ण। तो ऐसा जो मधुर आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में, भगवान को इसलिए इस श्लोक में भृत्य वत्सल कहा है, भृत्य वत्सल। तो हम कई सारे शुद्ध भक्तों के जीवन में देखते हैं कि कैसे भगवान उनके साथ ये मधुर आदान प्रदान करते हैं, कि भगवान हमेशा अपने भक्तों पे निर्भर है और भक्त हमेशा भगवान पे निर्भर है। तो यहाँ पे एक मैं जो कविता पोयम पढ़ना चाहूंगा अपने बुक में से, ठीक है ना, लेकिन वो इंग्लिश में है तो आप समझ जाना, उसका ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कविता मैंने लिखी थी तुकाराम महाराज के बारे में। तो देखते हैं हम कैसे शुद्ध भक्त और भगवान के आदान प्रदान कैसे होता है। भगवान हमेशा अपने भक्त पे निर्भर है और भक्त हमेशा अपने भगवान पे निर्भर है और उनका आदान प्रदान। तो तुकाराम महाराज के ऊपर, born and raised in Dehu village by Boloba and Kankai, pious but poor, he said he came directly from Vaikuntha, so he is Nitya Siddha devotee for sure. Wife and son passed away soon, following parents due to acute famine. Material nature didn't show any mercy that made himself deeply examined. Went to Bhandara mountain and did severe austerities for 15 days without interruptions. His life didn't remain the same after Vitthal gave him darshan and instructions. Chanted with great devotion day and night Lord Vitthal's holy name. Composed more than 4,000 abhangas expounding Lord's holy fame. delivered a prostitute who came to allure him with her exquisite beauty, won the heart of formidable Shivaji who came to test his honesty. In a dream, got initiation from Lord Chaitanya directly into Ram Krishna Hari, condemned Mayavad in his writings, thus expressing his intense fury. He happened to scare away the pigeons once while walking through the forest, stood motionless for hours till Lord arranged the birds to come back on his body to rest. Stones would vibrate Vitthal when he passed by, chanting with great absorption. In front of everyone, he went to Vaikuntha in same body amidst mass admiration.
तो ये कविता में जो सेवेंथ स्टैंजा में ये लिखा है कि कैसे एक बार तुकाराम महाराज जा रहे थे जंगल से भगवान का नाम लेते हुए राम कृष्ण हरि. तो चलते चलते उधर कुछ उन्होंने कबूतरों को देखा जो उधर अपना खाना खा रहे थे, बहुत सारे कबूतर. तो तुकाराम महाराज जा रहे थे बाजू से, तो जब ये सारे कबूतरों ने देखा कि एक व्यक्ति यहां से गुजर रहा है, तो तुरंत वो उड़ के भाग गए. तो जब तुकाराम महाराज ने ये देखा तो वो सोचने लगे कि मैं तो इनको कुछ कष्ट पहुंचाने नहीं वाला था, फिर भी ये उड़ गए यहां से. तो इसका मतलब है मुझ में अशुद्धता है, मुझ में अनर्थ है, इसलिए वो मुझसे डर के भाग गए. यानी मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं अशुद्ध हूं, तो मुझ में बहुत अनर्थ है, मैंने ये गलत किया. उनको ऐसा लगा, पछतावा हुआ उनको. तो सोचो हमें कभी ऐसा पछतावा होता है क्या? कुछ कबूतर अगर आसपास में है और हम जाते हैं, कबूतर उड़ जाते हैं, तो हम कबूतर को कहेंगे कि वो अशुद्ध है. लेकिन तुकाराम महाराज सोच रहे कि मैं अशुद्ध हूं, और वो सोचते हैं कि मैं पछतावा के लिए क्या करूंगा. यही पे वही पे वो खड़े हो जाते हैं और थोड़ा भी हिलते नहीं है, मोशनलेस एक जगह पे वही पे खड़े होते हैं. और भगवान को बोलते हैं, अगर मैं सच में इनको कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाने वाला था तो वो कबूतर फिर से यहां आ जाएंगे. तो एक निर्णय ले ले ऐसा, और ठाम निश्चय कर लेते और वहीं पे बिना हिले डुले खड़े रहते, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटे, तो कई पांच छह घंटे गुजर जाते, वो वैसे कि वैसे ही वहां पे खड़े हैं बिना हिले डुले. तो तब भगवान को चिंता होने लगती है. भगवान कहते हैं माय गॉड, भगवान नहीं कहेंगे, भगवान सोचने लगते कि क्या होगा मेरे तुकाराम महाराज का. तो वो चिंतित हो जाते. तो वो कृपावश सारे कबूतरों के हृदय में उनको आदेश देते हैं कि तुरंत फिर से आ जाओ जहां पे थे. तो कबूतर फिर से जहां इधर उधर गए थे छह घंटा, वो फिर से आ जाते हैं और तुकाराम महाराज के शरीर पे, सब पूरे शरीर पे वो बैठ जाते. तो तब तुकाराम महाराज को तसल्ली होती है, ठीक है, यानी मैं उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाने वाला था. तो फिर तुकाराम महाराज को अच्छा लगता है, फिर हो जाते हैं. तो सोचिए ये शुद्ध भक्त का भाव है, और भगवान भी कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं. तो भगवान और शुद्ध भक्त का आदान प्रदान हम देख सकते हैं कितना मधुर है. तो प्रभुपाद यहां पे वही कह रहे कि टेंडर डीलिंग्स, लॉर्ड हैज हिज अफेक्शनेट एंड टेंडर डीलिंग्स विथ हिज डिवोटीज. तो भगवान के ऊपर भक्त हमेशा निर्भर है और भगवान अपने भक्तों के ऊपर निर्भर है. तो यह है भगवान और भक्त का आदान प्रदान. तो मैं एक बार गोकुल धाम गया था. आपको तो पता है गोकुल धाम जो कर्नाटक में है, तो वहां पे जो फार्म कम्युनिटी है, बढ़िया भक्त रहते हैं वहां पे. तो एक बार मैं गया था वहां पे गोकुल धाम में,
तो वहां पे उस समय हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज भी आए थे। तो उधर के किस्से काफी आपने सुने होंगे और मैंने भी सुने थे, तो काफी उधर जो बहुत ही क्रेजियस बहादुर वही रह सकते तो मुझे वहां पे ब्रजेश्वर प्रभु बता रहे थे कि कैसे इधर शेर आते हैं, चीता, और एक बार उन्होंने मुझे शेर के पंजे भी दिखाए थे गेट के बाहर, उनके गेट के बाहर रात में कभी कभी शेर आता है। और उधर बड़ा एक बार 13 फुट का किंग कोबरा मिला था तो ऐसे सुन के काफी डर लगता था, लेकिन वो उधर के भक्त बोलते हैं चिंता नहीं करने की, और महाराज ने उनको बोला है कि आप भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे, अभयम सत्व समशुद्धिम। तो अभयम सबसे पहला क्वालिटी है भक्तों का, तो वो भक्त पूरे कन्विंस है, लेकिन मैं इतना कन्विंस नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए गया था। तो ये भक्त पूरे भगवान के ऊपर निर्भर। तो एक बार महाराज बोले एक दिन कि हम वो अंदर के जगह पे जाएंगे जो कि और अंदर है, ये तो बाहर 14 एकड़, अंदर 400 एकड़ कुछ तो है, वो जंगल के बीचों बीच पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है, उधर किसी प्राणी को मारना अलाउड नहीं, आदमी मर गया तो भी चलेगा, ऐसा रूल है उधर वो रिजर्व फॉरेस्ट है, उनका फॉरेस्ट है, आप जाके रह रहे उधर तो महाराज बोले हम जाएंगे अंदर, वो अंदर की जगह पे। चलो महाराज है तो हम महाराज के पीछे पीछे जाएंगे महाराज आगे हम पीछे, तो उधर के सारे भक्त और मैं भी एकदम पीछे। तो हम जा रहे थे कीर्तन करते हुए, और फिर वो जगह काफी अंदर है, तो अंदर काफी समय चलते 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 आधा पौन घंटा ऐसे चलते चलते फिर हम अंदर अंदर गए, एकदम घना जंगल, और उधर एक बड़ा एक ऐसा टेकड़ी टेकड़ी जैसा था छोटा सा पर्वत, और उसके ऊपर महाराज ने उनको भक्तों को बोला था एक छोटा सा घर बनाने के लिए, तो उधर उन्होंने बनाया था हाथ से, तो उधर महाराज प्रवचन देने वाले। तो हम सब जा रहे और फिर वो पर्वत के ऊपर गए, और बढ़िया एकदम सुंदर उन्होंने घर बनाया था लकड़ी का, तो उधर जाके फिर हम सब गए और फिर सब बैठे, और फिर महाराज ने वहां पे प्रवचन दिया सुंदर। तो महाराज यही बता रहे थे कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, ये जंगल घना जंगल, सोचिए ये घने जंगल 400 एकड़ एक टेकड़ी के ऊपर बैठ के महाराज देख रहे। तो हमें भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होना चाहिए, महाराज बता रहे थे भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, तो हम भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान रक्षा करते अभयम सत्व शम शुद्धिम, महाराज यही बता रहे थे। तो सब अच्छा प्रवचन वगैरह हो गया, हम सब सुन रहे थे मधुर सब। तो उसके बाद किसी ने तो देखा मेरे पैर पे एक ऐसा बहुत सारा खून निकल रहा था मेरे पैर से, तो मैंने भी देखा अरे तो काफी सारा खून बह गया इधर उधर, ऐसे मेरे कपड़ों पे खून लग गया, तो मुझे भी समझ में नहीं आया ये खून कैसे आ रहा है इतना। तो महाराज ने भी देखा इतना खून कैसे आ रहा है, तो फिर थोड़ा देखा नजदीक से, तो वो निशान जो था जहां से पैर में से जो खून आ रहा था काफी सारा, तो महाराज बोले ये लीच, लीच को क्या बोलते हैं हिंदी में, जड़ू, जड़ू मराठी में बोलते हिंदी में समझ जाएंगे आप, लीच कीड़ा होता है एक प्रकार का, तो लीच ने काटा है। बोला बाप रे कैसे काटा है लीच ने, तो बोले वो लीच ऐसा होता है कि जब आप चल रहे हैं जंगल से तो आपको पकड़ लेगा और वो एक एनेस्थेशिया दे देता है आपको, पावरफुल एनेस्थेशिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा उसने काटा है, और वो इतना सा होता है और जो खून पीते पीते वो तीन गुना होता है। आपने कभी लीच ट्रीटमेंट लिया होगा, मैंने लिया बाद में तो लीच इतना सा इतना बड़ा होता है खून पी के। तो हम जब जा रहे थे इतना देर से वो लीच कब पैर को पकड़ा, कब इतना सारा खून उसने चूसा और कब खुद से छोड़ दिया मुझे पता भी नहीं, और लेक्चर पूरा हो गया, लेक्चर के अंत में पता चला किसी और ने बताया, उसमें दर्द कुछ हो नहीं रहा था लेकिन बहुत सारा खून बह गया, तो मैं काफी डर गया। तो फिर बाद में एक भक्त ने जाके कुछ तो एक उधर से पत्ता कुछ तो तोड़ा, उसका चूरा करके लगाया उस पर, तो तुरंत खून रुक गया। तो फिर बाद में मैं सोच रहा था ये भगवान के ऊपर निर्भर रहना अच्छा है ये इधर के भक्त सब उनको विश्वास है ये सब अभयम समशुद्ध सत्व समशुद्धिम, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं है, शायद इसलिए मुझे वो लीच काटा। तो बहुत दिनों तक मैं सोच रहा था ये लीच तो वो निशान काफी समय तक था, तो बाद में मैं उधर ज्यादा गया नहीं, क्योंकि हालांकि भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जो बहुत ही एडवांस भक्त है तो उधर के सारे भक्त उनका ऐसा ही कहना है, भगवान के ऊपर निर्भर रहो, भगवान रक्षा करते हैं, चिंता मत करो। तो एक भक्त ने कहा तो ये तो सिर्फ छोटा लीच काटा है, शायद आपके नसीब में रहेगा कि कोई बड़ा सांप या कुछ तो काटे, लेकिन वो लीच काट दिया, इसलिए आप ग्रेटफुल रहो भगवान। बोला ठीक है ठीक है। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं हम कभी कभी। तो भगवान के जो आदान प्रदान होता है शुद्ध भक्त के साथ, तो वृंदावन में हम देखते हैं कि कैसे, यहाँ पे भी प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में कि कैसे कृष्ण जो है माता यशोदा के ऊपर निर्भर है और वो हमेशा अपने भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं और उन्हें वो अच्छा लगता है जब अपने भक्त उनको ताड़ते हैं, ताड़ना देते हैं, तो भगवान को वो अच्छा लगता है। तो जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान और यशोदा का मधुर आदान प्रदान। ये श्लोक आता है, स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कबर सृजा दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। तो इसमें बताया है कि कैसे भगवान देखते हैं कि यशोदा कितना प्रयत्न कर रही है, स्वमातु स्विन्न गात्राय, यानी पूरे जो यशोदा के जो कपड़े है वो पसीने से भीग गए हैं और वो कृष्ण को बांधने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन कृष्ण बंधे नहीं जा रहे, तो बहुत प्रयत्न कर रही है यशोदा, बहुत प्रयत्न कर रही। तो भगवान ये प्रयत्न देख के खुद ही बन जाते हैं, कृपया सीत स्वबंधने, तो भगवान खुद बन जाते हैं यशोदा के इस प्रेम के कारण। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान तो अनंत है और ये अनंत भगवान को एक रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है। तो वो दो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक स्त्री है उसके इतने लंबे बाल होते हैं, इतने सारे बाल, उन बालों को एक छोटा जो केश बंद होता है उससे बांधा जा सकता है। इतने सारे बालों को एक छोटा सा केश बंद से भी बांधा जा सकता है। या एक राजा का बड़ा तिजोरी होता है, इतना सारा धन संपत्ति है उसके तिजोरी में, उसको एक छोटा सा ताला लगा दिया तो उस ताले से इतना सारा संपत्ति को बांध सकते हैं। तो उसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान जो अनंत है, अनंत गुण है उनके, भगवान अनंत है, अनंत शक्तिशाली है, उनको यशोदा ने एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो भगवान का ये सुंदर आदान प्रदान देखते हैं अपने भक्तों के साथ। एक बार कृष्ण बहुत छोटे थे, 2 साल के, तभी कृष्ण बलराम ऐसे बैठे थे और सभी गोपियां आजू बाजू में थी और यशोदा भी वहां पे थी, तो सब कृष्ण और बलराम की तरफ देख रहे थे और इतने सुंदर उनके रूप को देख के मोहित थे। तो कृष्ण ने एक व्रजवासी को जाते हुए देखा, एक व्रजवासी और एक उनकी पत्नी, ऐसे दोनों जा रहे थे दूर से। तो कृष्ण ने पूछा यशोदा को कि ये कौन है, तो यशोदा ने उनका नाम बताया और वो बाजू में कौन है, वो उनकी पत्नी है। तो कृष्ण बोले मुझे भी एक पत्नी चाहिए। तो कृष्ण है 2 साल के, तो सभी हंसने लगे, गोपियां, सब गोपियां थी, यशोदा भी हंसने लगी। तो यशोदा बोली कृष्ण तुम्हें भी पत्नी चाहिए? हाँ मुझे भी एक पत्नी चाहिए। तो यशोदा बोलती है देखो यहां पे सारी गोपियां बैठी है आजू बाजू में, तो तुम जाके जिस गोपी को अपना पत्नी स्वीकार करना चाहते हो उसके गोद में जाके बैठ जाओ। तो कृष्णा इधर उधर भागते 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 एक वहां पे एक बूढ़ी स्त्री थी बैठी हुई, तो उसके गोद में जाके कृष्ण बैठ जाते और सभी हंसने लगते जोर जोर से। तो फिर यशोदा पूछती है, कृष्णा तुमने इस स्त्री को, ये बूढ़ी स्त्री को क्यों चुना? तो कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी दांत नहीं है और उसे भी दांत नहीं है, तो हम दोनों परफेक्ट मैच है। दोनों के दांत नहीं है। तो ऐसे कृष्णा अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबाते हैं। और एक पास टाइम है कृष्ण का कि कैसे कृष्ण ने सबसे पहले चोरी कैसे की, माखन की। तो अपने घर से ही शुरुआत की उन्होंने। तो जब एक बार जो घर में जहां पे माखन रखा था वहां पे कृष्ण एकदम छोटे थे, रेंगते रेंगते हुए जाते हैं और मटकी में इतना सारा माखन है। तो कृष्ण को लगता है वाह, और आजू बाजू में कोई नहीं है। तो कृष्ण तुरंत जाके उस मटकी में हाथ डालते हैं और माखन खाने लगते हैं। और खाते 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 यशोदा को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और यशोदा तुरंत वहां पे पहुंच जाती है। और कृष्ण का हाथ उस माखन के मटके में है और यशोदा तुरंत देखती है, हे कृष्णा क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? कृष्ण बोलते हैं, नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। फिर क्या कर रहे हो, ये माखन में तुम्हारा हाथ है? कृष्ण बोलते, ये माखन में मैंने हाथ क्यों डाला है? ये जो तुमने मेरे हाथ पे इतने सारे कंगन पहना है उसके वजह से मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही, इसलिए मैं ये ठंडे माखन में हाथ डाला है ताकि हाथ ठंडा हो जाए। तो यशोदा देखती है, हाथ निकाल के देखती है, हाथ को टेम्परेचर चेक करती है, ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब, कुछ हुआ नहीं तुम्हें, ये तो कंगन से कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे मुंह पे माखन कैसे फिर है? ये मुंह पे तो माखन दिखाई दे रहा है, ये कैसे? कृष्ण बोलते, मैया क्या हो गया, जब ये मैं हाथ डाला था माखन के अंदर तो एक चीटी आ गई मेरे चेहरे पे और मेरे चेहरे पे चीटी इधर उधर घूमने लगी। तो वो चीटी को निकालने के लिए मैंने ये हाथ से ऐसा वो चीटी को निकाल दिया, तो थोड़ा माखन मुंह पे लग गया, लेकिन मैंने माखन की चोरी नहीं की। तो ये देखे यशोदा का प्रेम कृष्ण के लिए और भी बढ़ जाता है। तो कृष्ण ऐसे वृंदावन में कई सारे लीलाएं करते हैं जिससे भक्तों का प्रेम उनके लिए और भी बढ़े। तो ये है भगवान और उनके भक्तों के बीच में एक मधुर आदान प्रदान। भक्त हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर है और भगवान भक्त के ऊपर निर्भर है। तो हम ये चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं कि कैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। जैसे जब बंगाल के वैष्णव सब आते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु खुद जाके सबका स्वागत करते हैं और हर एक भक्त को अपने हाथों से चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। और उसमें वर्णन भी है कि कैसे हर एक भक्त का गुणगान करते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि तुम सब बहुत अच्छे हैं, यू आर ऑल ग्रेट डिवोटीज एंड यू हैव सो मच डिवोशन, ऐसे जनरल नहीं बोलते। हर एक भक्त का एक गुण बताते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं इंडिविजुअल। और जब वो आते हैं गंभीरा में सब भक्तों को लेके आते हैं और जब प्रसाद परोसते हैं तो सब एक एक भक्तों को क्या क्या अच्छा लगता है, इसको ये दो, इसको पूरी अच्छा लगता है, इसको हलवा अच्छा लगता है, इसको कचौरी अच्छा लगता है, ये दो ये दो। तो सब भक्तों को क्या क्या अच्छा, इसको और ये दो। तो चैतन्य महाप्रभु कितने पर्सनल उनके डीलिंग्स में। और जब उनको सभी को रहने का भी अरेंजमेंट करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं कि आप इनके साथ जाओ और किसको कैसा घर चाहिए, कैसा अकोमोडेशन चाहिए वो उनको दो। ऐसा नहीं कि सबका अकोमोडेशन हो गया, आप अपने इधर ये चाबियां ले लो और जाओ। नहीं, किसी को समंदर के नज़दीक चाहिए, किसी को जगन्नाथ मंदिर के नज़दीक चाहिए, किसी को गंभीरा के नज़दीक चाहिए। तो किसको कैसे अकोमोडेशन चाहिए वो गोपीनाथ आचार्य को बोलते, आप सब देखो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कैसे हर एक भक्त का कितना ख्याल रखते हैं, तो उनके भी हम डीलिंग्स देखेंगे, उनके भी जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ इतना मधुर है चैतन्य चरितामृत में। जैसा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत ये अमृतेर सिंधु कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। तो चैतन्य चरितामृत क्या है, एक अमृत का सिंधु है, और अगर हम उसको पढ़ते जाएंगे तो उसका एक बिंदु ही काफी है कर्ण और मन को तृप्त करने के लिए। कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। तो इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान और अपने भक्तों के बारे में। तो इस जगत में ऐसा नहीं है, जो डीलिंग्स है इतने मधुर नहीं है, टेंडर डीलिंग्स नहीं है। इस जगत के जो डीलिंग्स है भौतिक जगत में, तो हम देखते हैं कैसे एक जो फैमिली है, परिवार, उसमें भी कितना झगड़ा होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी का झगड़ा है। तो जो आदान प्रदान है इतना मधुर नहीं होता है। तो हालांकि एक रिसेंटली एक भक्त बता रहे थे कि कैसे जापान जो कि इतना प्रगतिशील देश है, तो न्यूज में आया था एक बार कि जापान में एक बार एक लोकल ट्रेन 25 सेकंड लेट हो गया, तो रेलवे के ऊपर केस किया लोगों ने, 25 सेकंड लेट क्यों हो गया ट्रेन, तो न्यूज में आ गया। तो सोचिए उधर 25 सेकंड, अपने इधर 25 घंटे भी लेट हो गया ट्रेन, तो कुछ कोई बोलता नहीं, ट्रेन आ तो गई एटलीस्ट, नेक्स्ट डे टाइम पे आ गई। तो इतना प्रगतिशील देश है वो। लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि उधर सब कुछ अच्छा है, घर वगैरह सब अच्छा है, परफेक्ट हाउसेस, हाउसिंग कॉलोनी सब एकदम, लेकिन अंदर के जो परिवार है वो टूटे हुए परिवार है। और उधर एक कंसेप्ट है रेंटल फैमिली। क्या है रेंटल फैमिली? तो ऐसे अलग अलग कंपनियां है वहां पे, जो कंपनीज रेंट करती है, रेंट पे देती है। आपको क्या चाहिए, आपके पिताजी इतना अच्छा बर्ताव नहीं करते ना, हमसे ले लो, एक पिताजी ले लो कुछ घंटे के लिए, इतना आपको देना पड़ेगा, वो आपके साथ जैसे आपको चाहिए वैसा बर्ताव करेंगे, आप ये फॉर्म में लिख के देना। माँ अच्छी नहीं है क्या, माँ भी मिल जाएंगी, पिता, भाई, बहन, सब सब है हमारे पास, हायर रेंटल पे, रेंटल फैमिली। तो ऐसे रेंट पे मिलते हैं माँ, माता, पिता, बहन, भाई, रेंट पे आपको जितने दिन चाहिए उनका फीस भरना पड़ेगा, और वो जैसे आपको टेंडर डीलिंग्स वो आपके साथ बर्ताव करेंगे, लेकिन आपको बाद में वो डीलिंग्स डील करना पड़ेगा, बाद में पैसा देना है। तो ये है इस भौतिक जगत के डीलिंग्स, लेकिन भगवान के डीलिंग्स अपने भक्तों के साथ कैसे हैं? तो भगवान ही हमारा, जो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ही हमको असली तरह से समझ सकते हैं। When everyone else fails to mitigate the miseries, only Krishna can help his devotees. यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ही ऐसे एक व्यक्ति है कि हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, हमें पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम कई बार बोलते हैं एक दूसरे को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, तो ऐसा कहना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सामने वाला समझ नहीं पाता। लेकिन भगवान ही ऐसे एक व्यक्ति है जो कि हमें 100% समझ सकते हैं, हमारा दुख समझ सकते हैं, हमारा सुख समझ सकते हैं। तो कैसे भगवान और अपने भक्त, उनके एक आदान प्रदान होता है, भक्त हमेशा अपने भक्तों के ऊपर निर्भर और भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर निर्भर। तो एक लास्ट एक पास्ट टाइम बताऊंगा प्रभुपाद का, फिर हम एंड करेंगे। तो कैसे जो कैसे जो शुद्ध भक्त है, भक्त है जो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने जब भारत में आए अमेरिकन्स को लेके, तो काफी सारे भारतीय प्रभावित थे कि कैसे ये अमेरिकन्स यहाँ पे आए भारत में. तो कई सारे लोग खुश भी थे और कई सारे लोग ना खुश भी थे. तो ये गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु और ये काफी सारे भक्त आए, तो श्रील प्रभुपाद इनको कीर्तन के लिए, हरिनाम संकीर्तन के लिए भेजते थे. तो एक बार इनको सबको हरिनाम संकीर्तन के लिए भेजा रास्ते पे मुंबई में. तो सभी भक्त हरिनाम संकीर्तन के लिए गए, सारे वेस्टर्न डिवोटीज. और हरिनाम करते करते एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने इनको घेर लिया, मॉब. और ये लोग बोल रहे थे कि तुम लोग CIA एजेंट्स हो. CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमेरिका की खुफिया जासूस एजेंसी. तो आप CIA से हो और इधर से सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हो. तो ऐसे कई सारे लोगों ने इन भक्तों को घेर लिया. और हमें पता है इंडिया में जो मॉब क्राउड जब गुस्सा होता है तो क्या होता है, उसको इंग्लिश में मॉब लिंचिंग बोलते हैं, लोग मार ही डालते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हो गया. तो ये सब लोगों ने घेर लिया इस भक्तों को, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु और ये कुछ भक्त थे. तो सब सोचने लगे अभी क्या होगा, ये सब लोग तो हम पे आरोप कर रहे हैं कि हम CIA के एजेंट्स हैं और यहां में तो मार ही देंगे. और ये लोग बोल रहे थे तुम्हारे मंदिर पे जो चक्र होता है ऊपर, वो चक्र एक ट्रांसमिशन एंटीना है, उससे तुम इंफॉर्मेशन भेजते हो अमेरिका, इंडिया का इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और अमेरिका भेजते हो वो चक्र के द्वारा, ऊपर जो चक्र होता है. तो भक्त सोचे क्या बोलने का इनको, क्या बोले भी तो क्या बोले. तो गुरुदास प्रभु प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, भगवान कुछ तो हमें बुद्धि दो, कैसे हम अभी इससे निपटे, ये सब लोग तो हमें घेरे हुए है. सारे बहुत सारे लोग घेरे थे और भक्त बीच में अटक गए. तो गुरुदास प्रभु सोच रहे थे क्या बोले क्या बोले. तभी उन्होंने अपने पॉकेट में, उनके पॉकेट में एक बॉल पेन था, ऐसे हम जो रखते हैं, और वो बॉल पेन से उनको एक आइडिया आ गया. तो वो बोले देखो ये बॉल पेन देख रहे हो. सब बोले हाँ देख रहे, ये बॉल पेन भारत का है. और देखो ये बॉल पेन के वजह से हमेशा हम देखते हैं ना क्या होता है, इधर इंक लीक होके ये सब पूरा लीकेज होता है. बोले तुम्हारे भारत में एक बॉल पेन भी ठीक से चलता नहीं, अमेरिका से हम आके तुम्हारे पास क्या चुराए, तुम्हारे पास है क्या चुराने के लिए, एक बॉल पेन भी ठीक से चलता नहीं, तुम्हारे से चुरा के क्या करेंगे अमेरिकन लोग. सब सोचने लगे हाँ बराबर है बराबर है, क्या कुछ की बॉल पेन ठीक से चलता. सब चले गए वहां से. गुरुदास और बाकी भक्त आ गए. तो ये बोलते थे हमेशा कि हम, श्याम सुंदर प्रभु बोलते थे, हम ऐसा चैलेंज देते थे भगवान कृष्ण को कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि हम इतना संकट में हम खुद को डाल लेंगे कि कृष्ण को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए. तो हम ऐसे भगवान को ही चैलेंज देते थे, ऐसा हम खुद को ऐसे संकट में डालेंगे, हम देखेंगे कैसे भगवान बचाएंगे. तो ऐसा चैलेंज भगवान को देते थे. तो भगवान भी, क्योंकि भक्त के, वो भी भक्त के अधीन है, तो भगवान भी बचा लेते थे उनको. तो ऐसा है भगवान और अपने भक्तों के बीच में एक सुंदर आदान प्रदान होता है. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदी.